ओम शांति। उपराम और साक्षी दृष्टा। राजा जनक को कही जाता था विधेयी। उपराम। एक बार एक साधु राजा जनक के पास आया और राजा जनक को कहा, मेरे को आप बताओ विधेयी क्या होता है, उपराम क्या होता है, आप राजा हो, हर चीज कर रहे हो, फिर भी आप उपराम हो, कारोबार संभाला हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, फिर कैसे आप उपराम हैं। राजा जनक ने कहा, अभी सुबह का समय है, शाम को बैठकर चर्चा करेंगे, तब तक आप जाकर महल देख लो, महल में अंधेरा है, ये दिया ले जाओ, पर दिए को बुझने नहीं देना, अंधेरा है। वो थोड़ी देर बाद राजा जनक के पास आया, दिया जला हुआ था। राजा जनक ने कहा, आपने महल देख लिया? साधु ने कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान दिए पर था कि ये बुझ नहीं जाए। तब राजा जनक ने कहा, आपका आंसर आ गया, मैं हर कार्य करते हुए भी, राज्य भी संभालते हुए, उससे अलग अपनी चेतना में काम करता हूं। अनासक्त का अर्थ ही है तटस्थ, न्यूट्रल। और आज सबसे बड़ी जरूरत है, कई कंट्री भी फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रल, तटस्थ, न राइट न लेफ्ट, तभी वो सेफ है। उपराम का अर्थ हुआ ऊपर वाले के साथ रहकर मैं काम कर रहा हूं। घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योगी हूं, जो बाबा ने हमेशा कहा कि घर गृहस्थ में रहना है, छोड़ना कुछ नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है, अपने रोल को पूरा करना है, अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है और अपने अंदर के रिसोर्सेस को भी बाहर निकालना है। ये सब करते हुए मैं कर्मयोगी हूं। कर्मयोगी का अर्थ ही हुआ कर्मातीत। कर्म भी कर रहा हूं पर कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है उसका असर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, मैं उससे उपराम हूं। मेरा रोल है कर्म करना, पुरुषार्थ करना, पर मैं इनमें अनासक्त हूं, अटैच नहीं हूं, उससे अलग हूं, अपने शरीर से भी अलग हूं। शरीर भी मेरा एक रथ है, मैं सारथी बनकर इस शरीर का यूज कर रहा हूं। जो गीता में कहा लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब मैं मास्टर बनकर कर्म इंद्रियों से काम ले रहा हूं, मैं कर्म इंद्रिय नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं उससे अलग एक चैतन्य शक्ति हूं, उस कॉन्शियसनेस में रहकर काम कर रहा हूं, उसको कहेंगे उपराम। मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव का असर नहीं हो रहा है, मैं रिजल्ट कॉन्शियस नहीं हूं, एक्शन कॉन्शियस नहीं हूं। जो मेजर प्रॉब्लम आज के समय का है, स्ट्रेस का आज मेन कारण, मैं कई भाई बहनों से मिलता हूं, ज्यादातर ने ये कहा कोरोना टाइम के पीरियड कोई एक्शन ही नहीं था, कोई सेवा नहीं थी, तो हम अंदर ही अंदर खालीपन फील कर रहे थे, एम्प्टीनेस। इसके कारण कईयों को कई प्रॉब्लम भी आए, उसमें मेन आया एंजाइटी। एंजाइटी अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया है। कब कुछ करने को नहीं है तो मैं खालीपन फील करता हूं, कुछ है तो ठीक है। अब बाबा ने हमें पहले से ही ट्रेनिंग दे दी, एक्शन है तो ठीक है, एक्शन नहीं है तो भी ठीक है। और बाबा इसलिए ये सब ट्रेनिंग दे रहा है हमारी स्वस्थिति को मजबूत करने के लिए। उपराम और साक्षी दृष्टा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों की कनेक्टिविटी है, और दोनों का रिजल्ट जो आता है वो नष्ट मोवा स्मृति लब्धा आता है, जो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम देखें पहला चैप्टर अशरीरी का है, सोल कॉन्शियस का है, तो 18 चैप्टर उसका प्रोडक्ट है, मेरे को नष्ट मोवा स्मृति लब्धा बनना है, और उसके लिए मेरे को बहुत काल का अभ्यास चाहिए। धीरे धीरे जब मैं उपराम रहना सीख लेता हूं, उपराम का दूसरा अर्थ हुआ मैं इमोशनली साइकोलॉजिकली बिना कारण से कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं। आप देखते हैं कई कई बार मैच होते हैं, मूवी में जाते हैं कई लोग, और देखते देखते रो पड़ते हैं, मैच देखते हैं, कईयों को कई प्रॉब्लम आ जाते हैं, मैच जीता या हारा, हार्ट अटैक आते हैं। जीता भी तो हार्ट अटैक, हारा भी तो हार्ट अटैक, क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इमोशनली वो इन्वॉल्व हो गए, मूवी में भी इन्वॉल्व हो गए, चाहे एक्टर है विलन है उसमें इन्वॉल्व हो गए, जब मेंटली इन्वॉल्व हो गए, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, इमोशनली ट्रैप हो गए, तो प्रॉब्लम आएगा। कहीं भी हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो प्रॉब्लम आएगा। उपराम का अर्थ है, मैं न हायर ब्रेन का यूज कर रहा हूं थिंकिंग का, न इमोशनल का, जो जैसी स्थिति है वैसा मैं देख रहा हूं। ओवर थिंकिंग नहीं है और इमोशनल अंडर थिंकिंग नहीं है, दोनों से परे होकर मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूं। कर्तापन का असर, कर्तापन से परे होकर काम कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सारथी हूं, मैं रथ को चला रहा हूं और उसका कंट्रोल भी ऊपर वाला कर रहा है। मेरा काम है इस ड्रामा में जो सीन आ रहे हैं उनको देख रहा हूं, चाहे वो अच्छे सीन है चाहे ठीक नहीं है, उनको मैं देख रहा हूं, उनसे प्रभावित नहीं हो रहा हूं, उसका असर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कहा तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, किसी से मेरी अपेक्षाएं नहीं है, मैं न्यूट्रल होकर गेम को खेल रहा हूं। बहुत बड़ी स्टेज है, बहुत डिफिकल्ट स्टेज है कि आप उपराम होकर, साक्षी होकर गेम को देख रहे हो। जब उपराम अवस्था आ जाती है तो हमें शरीर का दर्द, दुख, तकलीफ, उसका असर भी कम हो जाता है। और वो हम सभी ने देखा, दादियों को देखा, हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर आते थे, डॉक्टर को लगता था इनको बहुत दर्द होगा, पूछेंगे, पर दादी हमेशा पूछती थी, डॉक्टर आप कैसे हो। दादी गुलजार जी का था, जब सर्जरी हुई डॉक्टर बहुत कुछ नहीं जानता था, पहली बार ही कॉन्टेक्ट में आया था। डॉक्टर जब जाते थे तो पूछते थे, तो दादी उनसे पूछती थी कि डॉक्टर आप कैसे हो। ये सुनकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगता था और धीरे धीरे कांटेक्ट में आया, माउंट आबू आया और ग्लोबल हॉस्पिटल बना। तो ग्लोबल हॉस्पिटल कहां से बना? दादी जी की उपराम सेवा से, क्योंकि उपराम हो गई तो तकलीफ, दर्द फील नहीं होता था। तो धीरे धीरे हम अपनी अवस्था को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को इतना शक्तिशाली बनाए कि सामने जो हो रहा है उसका इफेक्ट कम होता जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीरो हो जाएगा, कर्माती धीरे धीरे बनेंगे, पर प्रैक्टिस करते रहें कि कर्म करते रहें और कर्म का रिजल्ट, कर्म का पास्ट मेरे को असर नहीं डाले। जब उपराम अवस्था हो जाती है तो नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट खत्म हो जाता है। शेख फरीद अपने बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जब लोग उपराम हो जाते हैं, विदेही हो जाते हैं, उनको असर क्यों नहीं होता दुख का? दुख होता है पर उनको उसका असर नहीं होता। उन्होंने एक कच्चा नारियल मंगाया, बोला इससे नारियल निकालो। वो व्यक्ति ने बड़ी कोशिश की, कच्चा नारियल था, डिफिकल्ट लगा। फिर उन्होंने कहा एक पक्का नारियल निकालो। पक्का नारियल आया और फटाफट निकल आया, उसकी गिरी। बोला यही फर्क है, जब कच्चा है, विधेय नहीं है, तो वो चिपका हुआ है आवरण से, और जब पक गया तो उसने आवरण को छोड़ दिया। ऐसे ही जब हम शरीर से, शरीर रूपी वस्त्र से, शरीर रूपी आवरण से चिपके रहते हैं तो दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसीलिए बाबा का पहला हम लोगों का सबका लेसन क्या है? सोल कॉन्शियस। जितना हम शरीर से अलग होते जाते हैं, आवरण से अलग होते जाते हैं, उतना हम निवारण कर सकते हैं। आवरण वाला कभी भी निवारण नहीं कर सकता। निवारण यानी सॉल्यूशन। आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में पहला रिक्वायरमेंट क्या है? आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में जहां प्रॉब्लम कंटिन्यूस आते रहते हैं और आते रहेंगे, पहली रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? और एक अच्छा लीडर कौन है? पॉलिटिकल लीडर नहीं, सब कहीं भी, एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, एक घर का लीडर, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? मैनेज करे। और क्या? सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। और आज के समय जो आप आंसर दे रहे हो, ये पहले के थे, पुरानी डेफिनेशन थी लीडरशिप की। आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में जहां प्रॉब्लम आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं रहता। और अभी आपने देखा देवगढ़, ये झारखंड में प्रॉब्लम आया, जो वो रोपवे था उसमें फंस गए लोग, 3 दिन तक फंसे रहे, मेजॉरिटी को बाहर निकाल लिया। उसमें क्या खेल था? वहां का डीएम बता रहा था क्या फैक्टर थे, कैसे निकाला। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरेक्ट किया उन लोगों से, आर्मी, बचाव दल, लोकल, सबसे इंटरेक्ट किया, क्योंकि एक ये वंडरफुल सक्सेस था, एक चैलेंजिंग जॉब था और सडन आया। क्या था? और धैर्यता, एक और पेशेंस और निर्णय शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में। निर्णय शक्ति, सॉल्यूशन, जो बाबा कहते हैं समाधान, कारण का निवारण। एक अच्छा लीडर वही है जो धैर्यता से सॉल्यूशन निकालता है। और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया कि हरेक ने अपना सहयोग दिया। आर्मी थी, लोकल लोग थे, पुलिस थी, सबने सहयोग देकर वो डिफिकल्ट जॉब को ठीक किया और ऐसा प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आया। ये पहला प्रॉब्लम था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप सब लिखो, इसकी बुकलेट तैयार करो, ये आने वाले समय में मटेरियल हो जाएगा। अब आपने देखा प्रॉब्लम एकाएक आता है, कहके नहीं आता। बाबा ने भी कहा कि कहके नहीं आएगा, 5 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है। ये बाबा के शब्द है। तो क्या चाहिए हमें? जितना हम अशरीरी उपराम विदेही होकर काम करते हैं, हमारे इमोशन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। बीमारी का मुख्य कारण आज इमोशनल स्ट्रेस, 90% बीमारी का कारण आज हम खुद हैं। 1% जेनेटिक है, पर मेजर हम खुद हैं, और उसमें भी इमोशनल स्ट्रेस। मैं देखता रहता हूं उसका, इसीलिए है कि हम कहीं ना कहीं अटैच हो गए। तो साक्षी दृष्टा का अर्थ है डिटैच एंड ऑब्जर्वर। साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? डिटैच ऑब्जर्वर। मैं कोई भी काम डिटैच होकर साक्षी से देख रहा हूं। साक्षी दृष्टा, दृष्टा होकर उसको देख रहा हूं, अपने को भी देख रहा हूं, अपने संकल्पों को भी देख रहा हूं, खुद को भी देख रहा हूं, खुद के संकल्पों को भी देख रहा हूं कि कहां प्रॉब्लम है और उसको ठीक कर रहा हूं। तो डिटैच ऑब्जर्वर सबसे बड़ा कैरेक्टर। दूसरा लीडरशिप का क्या है? एक अपन ने निकाला सॉल्यूशन, डिसीशन, निर्णय शक्ति। दूसरा कैरेक्टर क्या है एक अच्छे लीडर का? और टारगेट, और बोलना, और कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय। दूसरा फैक्टर है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है वो देख रहा है। बोलना बात की बात है, वो देख रहा है, फील कर रहा है और फिर एक्शन कर रहा कि यहां का प्रॉब्लम क्या है। मोहम्मद यूनिस प्रोफेसर बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, हर दिन वो पढ़ाकर बाहर आते हैं और जाते हैं अपने घर। एक दिन उन्होंने पढ़ाने के बाद जब बाहर आए, देखा बाहर लेडीज फिश, क्योंकि बांग्लादेश में कॉमन है, वो सेल कर रही हैं। उन्होंने उनसे पूछा कितना कमा लेते हो। लेडीज ने कहा 100 रुपए 200 रुपए। बाकी पैसा कहां जाता है? ये जो हम नेट खरीदते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए, उसका हमें देना पड़ता है, हमने बारो किया है, उसका पैसा देना पड़ता है। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को अगले दिन सर्वे के लिए भेजा और सर्वे पर पता लगा कि मोस्टली इनका लोन 1,000 2,000 5,000 का है, और अगर हम इनका लोन दे दें, पैसा दे दें, तो इनका पैसा बचेगा और बेटर लाइफ को जिएंगे। उन्होंने माइक्रो बैंक शुरू किया, माइक्रो ग्रामीण बैंक। इनका काम ही था लोन देना 5,000 10,000 500 100। धीरे धीरे वो इतने फेमस हो गए कि कई कंट्रीज ने वो सिस्टम को एडॉप्ट किया और प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को नोबल प्राइज मिला। क्या फैक्टर था क्यों नोबल प्राइज मिल गया? वो तो प्रोफेसर था, उसका काम है पढ़ाना। क्यों मिल गया? बताएं। ऑब्जर्वेशन। इसीलिए जहां कहीं भी जाओ ऑब्जर्वेशन करो, देखो। और ऑब्जर्वेशन आपका अगर अच्छा है और आप एक्शन लेते हैं तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और वो तभी होता है जब मैं डिटैच हूं, डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। मैं साक्षी होकर हरेक का पार्ट देख रहा हूं। हरेक कोई एक्टर है, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है, हरेक की एक्टिंग है, चाहे वो अच्छी है चाहे कुछ भी है, उसकी गलती नहीं है, पर मैं उससे असर नहीं आ रहा है। उसके पार्ट को देखकर मैं उपराम होकर उसको देख रहा हूं, तो मेरे को असर नहीं आएगा नेगेटिव पॉजिटिव का। मैं अपने शरीर को भी देख रहा हूं, अपनी बीमारी को भी देख रहा हूं। बीमारी मेरे शरीर में है, पर मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। और वहां बुद्धि से मैं परमात्मा से पॉजिटिव थॉट्स लेकर, पवित्र ऊर्जा लेकर, शुभ संकल्प लेकर मैं दे रहा हूं। मैं बीमार नहीं हूं। बीमार कौन है? शरीर। मैं तो एक ऊर्जा हूं, मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। शरीर मेरा रथ है, और उसको शक्ति दे रहा हूं तो बीमारी भी ठीक होगी। वन थर्ड हीलिंग हमारे शरीर में नेचुरल होती है, अपने आप होती है, कुछ नहीं करो खुद ही ठीक होती है। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी। हेल्दी का अर्थ है हील दाय। हील दाय का अर्थ है मैं अपने को ठीक कर सकता हूं, और वो तब ठीक होता है जब मैं इससे डिटैच होकर साक्षी होकर इसको शक्ति दे रहा हूं। बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं और मैं ऊर्जा लेकर उनको शक्ति दे रहा हूं तो वो अपने आप ठीक होंगे। हाथ उठाएं और कहें आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूं। आई एम ब्यूटिफुल। जब समय मिले डिटैच होकर अपने को ऊर्जा दें, वाइब्रेशन दें। वाइब्रेशन तभी दे सकते हैं जब हम साक्षी होकर डिटैच होकर अपने को दे रहे हैं। जब हम सतोप्रधान स्टेज में हैं, हमारी सतोप्रधान स्टेज क्या है? अनादि और आदि हमारा स्वरूप जो है, जब हम उसमें टिकते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो वाइब्रेशन निकलते हैं। और आज समय काय का है? बाबा ने कई बार बोला, आज समय काय का है? वाइब्रेशन का। कुछ काम नहीं आएगा, बाबा ने कहा, आने वाले समय में कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? वाइब्रेशन है। इसीलिए बाबा ने कहा वॉइसलेस ही वायरलेस है। कनेक्टिविटी तब होती है जब हम शुद्ध और पवित्र आत्मा में टिक जाते हैं। हमारे शुद्ध संकल्प, शुभ भावना जब वाइब्रेट करती है तब वो लोगों को पोसती है। मैंने दादी जानकी जी को कई बार देखा, जब जाते थे बिल्कुल उपराम, उनको ये भी नहीं पता पैसा काउंटिंग, पैसा कभी अपने हाथ में रखा ही नहीं, उपराम। कुछ ना होते हुए भी सब आता था। उनका कम्युनिकेशन, उनका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग, व्हीलचेयर पे जा रही हैं क्लास कराने, लोग पूछते थे आप कार से क्यों नहीं आ रहे? नहीं, इससे मैं लोगों से कम्युनिकेट करूंगी, कनेक्ट करूंगी। जितना हम साधनों का कम यूज करते हैं उतने वाइब्रेशन स्ट्रांग होते हैं। अगर हम अटैच हैं तो वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे। वो तभी निकलते हैं जब मैं अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में टिक गया। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है संगम का? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण से मेरे को क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ते का अर्थ क्या हुआ? लाइट, 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 हल्का, डबल लाइट। तभी वो ऊपर उड़ता रहता, हमेशा दिखाते हैं फरिश्ता उड़ रहा है, उपराम ऊपर और फिर वाइब्रेशन दे रहा है, जहां जाना है वो जा रहा है वाइब्रेशन के द्वारा और वाइब्रेशन दे रहा है। तो वाइब्रेशन तभी निकलते हैं जब हम उपराम और साक्षी होकर रहते हैं, हमने पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। हम पकड़ते कब हैं? पकड़ता व्यक्ति कब है किसी भी चीज को? डर, जब डरता है, इनसिक्योरिटी है, घबराहट है, तो वो पकड़ेगा। ये ट्रेनिंग जब दी जाती है, जो अच्छे मास्टर हैं, हाउ टू स्पीक, वो सिखाते हैं कभी भी माइक को पकड़कर बोलना नहीं। अगर माइक को पकड़ रहे हो, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं डर है। और जब डर है, फियर है, तो ब्लड कहां आ जाता है हमारा? दोनों पांव में। ब्लड हमें कहां चाहिए? जीआईटी में, आंतों में और ब्रेन में। यहां क्यों चाहिए? यहां हमारी इम्यूनिटी है। कोरोना के समय बहुत लेक्चर चले इम्यूनिटी, 90% हमारी इमोशनल इम्यूनिटी है, 10% फिजिकल इम्यूनिटी है, 90% यहां रहती है। ये हमारी आते हैं सेकंड ब्रेन है, एक ब्रेन यहां है, एक ब्रेन यहां है, जो यहां होता है वो यहां होता है। जो मेरे संकल्प चल रहे हैं वही मेरे साथ हो रहा, थॉट्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स विथ फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। हर विचार, हर संकल्प एक ऊर्जा लेकर जा रहा है, और अगर मेरे को डर है तो मैंने पकड़ा हुआ है। और अब मेरे को खेल कैसे खेलना है? उससे अलग होकर खेलना है। एक बिजनेसमैन अफ्रीका गया, एक जंगल में गया, उसको वहां पैरट्स मिले, पैरट्स जो बात कर सकते हैं। वो एक पैरट को, तोते को पकड़कर इंडिया ले आया, इंडिया में पिंजड़े में रख दिया, रोज उससे बात करता था। 2 साल बाद फिर वो अफ्रीका जाता है और उस पैरट से पूछता है जो पिंजड़े में है, तेरे को कोई मैसेज देना है तेरे दोस्तों के लिए? बोला, उनको कहना मैं ठीक हूं, आई एम ओके। वो उसी जंगल में जाता है, मैसेज देता है कि आपका वो पैरट ठीक है। इतना सुनकर एक पैरट गिर पड़ता, अनकॉन्शियस हो जाता है। इसको लगता है इसको उसकी याद आ रही है, वापस आता है, उस पैरट को कहता है मैंने आपका मैसेज दिया। इतना सुनकर एक पैरट गिर पड़ा था, अनकॉन्शियस हो गया था, जैसे ही ये मैसेज दिया तो ये पैरट भी अंदर पिंजड़े में अनकॉन्शियस हो जाता है। इसको लगता है इसको भी उसकी याद आ रही है, इसको हार्ट अटैक हो गया, खोलता है पिंजरा और उसको बाहर रख देता है। जैसे ही बाहर रखता वो उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। ये उससे पूछता है क्या सीक्रेट मैसेज था? वो पैरट कहता है उसने संदेश दिया था, अगर पिंजड़े से बाहर आना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरने का अर्थ क्या हुआ? मरना नहीं है, जो हमारे विकार हैं, नेगेटिविटी है, उसको छोड़ना है, अनवांटेड एरिया को छोड़ना है। साक्षी दृष्टा कैसे आएगी, कैसे हम इसको डेवलप करें? डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हर जगह साक्षी होकर रहना, देखना, जो जो कर रहा है उसको देखना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, इसका अर्थ है कि बिना काम से हमें अनवांटेड एरिया में इंटरफियरेंस नहीं करना। हर जगह अगर मैं कहूं, अपनी एडवाइस दूं, वो आज के समय में चलती नहीं। जहां जरूरत है, जहां नीड है, जहां डिग्निटी है, वहां आप करो। स्टीव जॉब एप्पल कंपनी का सीईओ था, 93 में उसकी कंपनी जीरो पर थी और वो अपनी कंपनी को टॉप पर ले गया, वन ऑफ द बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड, और उसके कारण एप्पल कंपनी टॉप पर गई और आज भी है। ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर यंग एज में। उससे पूछा गया, आप अपनी कंपनी को टॉप पर कैसे ले गए जो जीरो थी? उसने कहा तीन चीजें हैं। हर दिन जब सुबह उठता था मैं अपने से पूछता था, आज का दिन क्यों दिया गया है? आज अगर मेरे को दिया गया है तो क्यों दिया गया है? Why? दूसरा, जो कुछ भी मैं दिन में करूंगा उसको प्यार से करूंगा। लव योर जॉब, लव योर ड्यूटी, उसको अच्छी तरह करो। और तीसरा, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का अर्थ क्या है? बिना कारण से भागो मत।
कभी तुम मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार मुस्कुराए जा।
अब इस कैरेक्टर को, साक्षी दृष्टा को कैसे डेवलप करें, मैं कैसे डिटैच ऑब्जर्वर बन जाऊं, नेचुरल खिलाड़ी बन जाऊं, न्यूट्रल खिलाड़ी बन जाऊं। न्यूट्रल इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली मेरे को बिना कारण कोई भी घटना का इफेक्ट कम से कम आए। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 10% आता है, पर वो मेरे शरीर को बीमार नहीं कर दे, मैं उससे बाहर आ जाऊं, उस ट्रैप से मैं बाहर आ जाऊं। पहला है, क्योंकि टाइम, पहला है अपने को हमेशा मेहमान समझना, गेस्ट। ये मैं भी यूज करता हूं, आई एम ए गेस्ट इस जगह पर, आप भी आए, सब थोड़े दिन के लिए आए हैं और आपको मालूम है वापस जाना है, तो मैं गेस्ट हूं, मेहमान हूं। तो मेहमान कभी भी बिना कारण से अटैच नहीं होगा। टूरिस्ट हूं, और अच्छा, मैं टूरिस्ट हूं, बहुत अच्छी एक स्टोरी है। एक अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया आता है, एक योगी की कुटिया में जाता है, कुटिया में देखता है बुक्स है, चटाई है, लालटेन है, लैंप है। वो योगी से पूछता है, आपका फर्नीचर कहां है? तो योगी उससे पूछता है, आपका फर्नीचर कहां है? तो वो कहता है, मैं तो टूरिस्ट हूं। तो योगी कहता है, मैं भी टूरिस्ट हूं। टूरिस्ट कभी भी बिना कारण से वेट नहीं बढ़ाएगा। फ्लाइट में जाना है, फिक्स है, उतना ही वेट लेके जाना है, नहीं तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसे ही हम इस नाटक में, ड्रामा में, हम सब एक्टर हैं और सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। चाहे वो पॉजिटिव एक्टिंग कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं उसमें कई तरह के रोल होते हैं। कोई विलन होता है, कोई हीरो रहता है। हम उससे असर नहीं आता। विलन भी अच्छी एक्टिंग करता है कभी कभी, हीरो भी करता है, तो हम दोनों को एप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही इस चैतन्य एक्टिंग में हर एक कोई अपनी एक्टिंग कर रहा है, बोल रहा है। अब उसके बोल मेरे को असर न करें। इस एक्टिंग का रूल है कि मैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखूं। अगर रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दूंगा तो क्या होगा? वो दबाएगा। कभी बोलेगा बहुत अच्छे दिख रहे हो, कभी बोलेगा खराब दिख रहे हो, तो क्या आएगा? उसका असर आ जाएगा। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। रिमोट कंट्रोल का अर्थ क्या हुआ? अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम कभी भी लो नहीं करें। मैं इस समय यहां पर हूं, बहुत अच्छा हूं। हां बोले, हाथ उठाएं। इस समय मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम ओके, सब कुछ ठीक है। अब मेंटली अंदर जाना और फील करना कि किसी ने मुझे कुछ कहा। दो मिनट फील करना, किसी ने मुझे नेगेटिव बोला, मेरे को असर आता है कि नहीं? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है कि हमें अनवांटेड इफेक्ट से परे जाना है। उसी को उपराम कहेंगे, उसी को साक्षी दृष्टा कहेंगे। किसी ने कुछ कहा, मैं देख रहा हूं, बोला, कोई बात नहीं, ये उसकी एक्टिंग थी, मेरी एक्टिंग थोड़ी है। उसने अपना पार्ट प्ले किया, मैंने उसको साक्षी होके देखा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज साक्षी दृष्टा का है कि अपने शरीर को, अपने संकल्पों को दृष्टा होकर देखो। फिर से बैठे दो मिनट और अपने संकल्पों को देखो। उन संकल्पों को रिप्लेस करो शुभ भावना से। और पूरे विश्व को दो, बेहद में जाकर विश्व कल्याणकारी बनकर वाइब्रेशन दो, शुभ भावना दो। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। मेरे को प्रॉब्लम आया, मेरे को तकलीफ हुई, मैं हर्ट हुआ, बीमारी आई, तो क्या निकलता है? मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब उस समय साक्षी होकर अपने को देखना है, बहुत डिफिकल्ट है। उसका वर्णन हम हर जगह करते हैं। बीमारी आई, 100 लोगों को कहेंगे कि मेरे को ये तकलीफ है, मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, मैं देखता हूं। इवन कई हमारे भाई बहन भी उससे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। 100 को कहेंगे मेरे को ये तकलीफ है, तो क्या होगा? वो 100 लोग क्या करेंगे? 1000 को देंगे, इसको ये तकलीफ है। 1000 क्या करेंगे? 10000 को जाएगा। और हमारा हर संकल्प क्या होता है? पूरे विश्व में जाता है। तो जिनको ये तकलीफ है वो वापस कहेंगे, हाँ है, तेरे को है, तू ठीक नहीं है। तो बीमारी क्या होगी? और बढ़ेगी। क्या करना उस समय? साक्षी होकर मैं अपने को देख रहा हूं, उस तकलीफ को देख रहा हूं, और बुद्धि से उसको वाइब्रेशन दे रहा हूं, परमात्मा से जुड़कर उसको वाइब्रेशन दे रहा हूं, और वो ठीक हो रही है। अपनी बीमारी का, फाइनेंस का, संबंधों का नेगेटिवली कभी भी ज्यादा लोगों को मत बोलो। अपने डॉक्टर को पता है, फैमिली को पता है, बस बार बार बोलेंगे आई एम नॉट गुड, आई एम वर्थलेस, तो क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं है, और वो होगा, पैसा ही नहीं, हाँ मेरे को गरीबी है, वो जाएगा थॉट। इसलिए नेगेटिव थॉट को कभी भी बड़ा नहीं करें, उसको छोटा करें। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था अवनी लेखरा का। पैरा ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में। दोनों पांव काम नहीं करते हैं, स्पाइनल इंजरी हुई कार एक्सीडेंट में, फिर भी वो इस पैरा ओलंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीत कर आई व्हीलचेयर पर ही। क्यों जीती? अच्छा आंसर बताओ क्या? और अभी आप लोग पीएचडी वाले हो, भट्टी वाले यानी पीएचडी, और अच्छा आंसर बताओ। दोनों पांव काम नहीं कर रहे हैं, स्पाइनल इंजरी है। अगर वो सोच लेती मेरे तो दोनों पांव काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकती, मैं तो फेल्योर हूं, पर उसने क्या सोचा? उसने ये नहीं देखा कि दोनों पांव काम कर रहे हैं कि नहीं। उसने क्या सोचा? मैं क्या कर सकती, मेरे में कौन सी शक्ति है जो मैं कर सकती हूं। और उसने अपनी पॉजिटिविटी को बड़ा किया, तो नेगेटिविटी क्या हो गई? छोटी हो गई। इसीलिए जब हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आए, उस समय भी पॉजिटिव और साक्षी होकर उसको ठीक करें, उसका ज्यादा एक्सपांशन नहीं करें, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। होगा, जब हम साक्षी हो जाते हैं, साइलेंस में आते हैं, तो वो प्रॉब्लम खुद ही ठीक होता है। तीसरा, ट्रस्टीशिप। मैं ट्रस्टी हूं, मेरे को जो भी दिया गया है मैं उसका ट्रस्टी हूं, मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। यहां भी बैठा हूं, यहां पे बैठ गया, मेरे को जो पुरुषार्थ करना था करा, पर एक बार इधर आ गया तो मैं डिटैच हो गया। अब वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरा ओनरशिप नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम ओनरशिप लेते हैं, नाम मान शान का ओनरशिप लेते हैं, और मैंपन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैंपन आ गया, मैंने किया तो गए। इसीलिए कहते हैं रावण को राम ने नहीं मारा, भगवान राम ने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। जहां ईगो आ गया, अहंकार आ गया, सब जीरो हो गया। जितनी सेवा करी वो भी जीरो पे गई। तो ट्रस्टीशिप का अर्थ है मेरे को दिया गया है, और मेरा जॉब क्या है, बेहद में रहकर हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना। इसीलिए बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, इतनी आत्माओं में हमको सिलेक्ट किया है। क्यों किया है? कि हमारा काम है बेहद की सेवा में सबको सतो प्रधान बनाना, कलयुग से सत्युग लेना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाना, हमारी ड्यूटी वो है। पर ये मेरा वो नहीं है, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, है कोई वो नहीं। उनको भी साकाश डिटैच होकर साकाश दो, वो बाबा खुद ही कराएगा। मैं दूं, मैं ठीक करूं, वो कभी नहीं होगा, वो सक्सेस होगा ही नहीं 100%। तो ट्रस्टीशिप, मैं चला रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सब वो करा रहा है। जो बाबा एग्जाम्पल देता है, कौन सा? कठपुतली वाला। कठपुतली वाला क्या एग्जाम्पल बाबा देता है? वो कठपुतली का गेम खिलाता है, वो कठपुतलियां खेलती है। तो बाबा क्या करा रहा है ड्रामा संगम युग में? हम कठपुतलियां, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। तो उसको करने दो, उसको कराने दो। जब वो कराता है तो रिजल्ट अच्छा होगा, पर जब ओनरशिप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आता है। तो चलिए फिर 4 मिनट योग करते हैं। अच्छा, टाइम होने को आ गया, या पहले खड़े हो जाते हैं, फिर योग करेंगे 2 मिनट।
सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे, कदमों में हो चांद सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे। नामुमकिन को मार दठोकर, नामुमकिन को मार दठोकर, फूटेंगे खुशियों के फवारे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, शायद वो तो हमारे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो हमारे हाथ में है। और हम ही उसे डिसाइड करेंगे।
Nothing is impossible, everything is possible. Nothing...
परमात्मा से शक्ति लेकर शरीर के सभी ऑर्गन्स में जाने दें, साक्षी होकर शरीर के सभी ऑर्गन्स को देखें, जहां तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वहां पर फोकस करें और परमात्म एनर्जी को वहां पर फोकस करके एनर्जी दें। उस सिस्टम को, उस ऑर्गन को हील करें और अनुभव करें मेरा वो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी है, ठीक है। मैं एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं, शरीर मेरा वस्त्र, शरीर मेरा हार्डवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर हूं। सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर भी ठीक है। वापस नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ जाएं, सांस को छोड़ें, ब्रीद आउट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।